गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो पूरे हृदय से और पूरी बुद्धि के साथ हम भगवान के इस मंगलाचरण को उच्चारण करेंगे ताकि हम श्रीमद् भगवत गीता के इस आर्य ज्ञान में प्रवेश कर सकें। भगवते वासुदेवाय
गोकुल में रहे, उनके पास बहुत सारे
असुर आ गए, जिसमें कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा, परंतु भगवान ने कभी किसी असुर को मारने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि जो भगवान वो किसी भी असुर को हंसते खेलते मार सकते हैं, तो हमारे उनके शब्दों को जब हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में बैठे हुए असुर भी अवश्य मर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि एक दफा जब गुरु सांदीपनि के यहाँ पर भगवान शिक्षा लेने गए थे, भगवान होते हुए भी वो गुरु स्वीकार करते हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, मगर क्यों करते हैं? हमारे लिए सैंपल बनाने के लिए के जब मैं भगवान भी इस संसार में आता हूँ मनुष्य रूप में, तो मैं भी गुरु स्वीकार करता हूँ, तो आप सबको भी गुरु अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा होता है, गुरु स्वीकार करने के बाद हमको दक्षिणा देनी पड़ती है जो गुरु की इच्छा है। अब गुरु से जब उन भगवान ने शिक्षा ली तो गुरु सांदीपनि से पूछा, गुरु महाराज मेरी शिक्षा तो कम्प्लीट हो गई, अब बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ? गुरु ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो यदि उनकी कोई इच्छा हो। तो गुरु सांदीपनि की पत्नी ने कहा कि हाँ मेरी एक इच्छा है, कहते हैं सब कि तुम भगवान हो, तो क्या तुम मेरे मरे हुए पुत्र को ला सकते हो? मुझे नहीं, गुरु दक्षिणा होनी चाहिए। भगवान ने कहा गुरु माता जो आज्ञा, और वो कृष्ण गुरु दक्षिणा में गुरु सांदीपनि के उस मरे हुए पुत्र को। कुछ समय पहले गुरु सांदीपनि के पुत्र गए थे पिकनिक मनाने में, दरिया के किनारे पे गए थे, तो वहाँ पर पिकनिक मनाते मनाते वो पुत्र कहीं समुद्र में लहरों में गिर गए, चले गए, वापिस आए नहीं कभी। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है मैं लेके आऊंगा, तो ढूंढने के लिए गए थे, पहले गए समुद्र में, तो समुद्र में तो मिले नहीं क्योंकि वहाँ पर थे नहीं। फिर वहाँ से गुरु के पुत्र तो नहीं मिले, वो शंख मिल गया, शंख चूर्ण जो मानसी जमीन नाम का जो शंख है वो मिल गया। फिर भगवान ने सोचा अगर यहाँ पर नहीं है तो अवश्य यमराज के पास होंगे, यमराज के पास गए और बोला मेरे गुरु महाराज का पुत्र है यहाँ पर, यमराज यहाँ है तो वो लाइन से लेके आएगा। तब यमराज ने कहा नहीं नहीं मैं उसे कैसे दे सकता हूँ, ये तो संसार का नियम है ना, जो मर जाता है वो उसके स्वरूप में वापिस से नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा ये नियम मैंने बनाया है और आज मैं कहता हूँ मुझे वापस दे दो और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ तो दे दो। तो कृष्ण भगवान है और उनके जीवन का सबसे बड़ा रूल क्या है, सबसे बड़ा नियम क्या है कि वो किसी भी नियम को स्वयं बनाते हैं और स्वयं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर वो कृष्ण जो भगवद्गीता बता रहे हैं उस समय जो उन्होंने नारी कर किया। देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता सुनाई, भगवद्गीता में कितने श्लोक ऐसे 700 श्लोक है, ठीक है। और उस टाइम पर जाहिर सी बात है ये श्लोक का अर्थ है, जब ये डायलॉग्स है, ऐसे कोई कथा नहीं है कि बस बोल दिया और बाकी सब सुनते हैं, क्या है डायलॉग्स है। अर्जुन क्वेश्चन करता है फिर भगवान आंसर देते हैं, तो उस डायलॉग्स में कुछ तो समय लगा होगा, कुछ लोग बोलते हैं डेढ़ घड़ी लगा, कुछ लोग बोलते हैं सवा दो घंटे लगे, कुछ बोलते हैं 45 मिनट लगे, लेकिन कुछ तो समय लगा है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि उस समय में जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे, उस समय में दूसरे सभी योद्धा जो वहाँ पर आए थे वो क्या कर रहे थे? वो एकदम आराम से बैठे हुए थे। क्या दुर्योधन इतना धैर्यवान हो सकता है कि अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं और वो बोले हाँ ठीक है भले ये लोग बात कर रहे हैं, फिर युद्ध करते सिचुएशन ये थी शंख बज गया था, अब तो बस तीर उठाना था और युद्ध शुरू करना था, लेकिन सब शांत खड़े थे। उस टाइम पर तो दुर्योधन आता और बोलता ये क्या अभी शुरू कर दिया तुम लोगों ने अपनी कहानियां बोलना, चलो शुरू करो युद्ध पहले, इसके बाद जो बात होगी तो करेंगे। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था जानते हैं? उस टाइम पर भगवान ने समय को स्टॉप कर दिया।
ये काल की गति कोई नहीं रोक सकता, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि अर्जुन के लिए तो समय बीत रहा था, लेकिन दूसरों को तो ऐसा लगा जैसे अभी जैसे पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद सब स्टॉप हो गए, और गीता सुनाने के बाद सबको ऐसा लगा कि अभी जस्ट शंख बजा है और हमको युद्ध करना। उसी टाइम पर जैसे ही अर्जुन लास्ट में ऐसे कहते हैं कि अब मैं वही करूँगा जो आप मुझे आज्ञा दोगे, और अपना धनुष उठाते हैं, उसी टाइम पर सब लोग उसी टाइम पर युद्ध शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी बात यदि हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो आज हम यहाँ पर भगवद गीता सुनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े सब उसको आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में बात करके क्या लाभ प्राप्त करूंगी जो यहाँ पर ज्यादातर लोग जिसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो बहुत ही सरल तरीके से हम ये सब को समराइज करके बनने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो समझने की है कि गीता समझना इसलिए है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, ये कोई नॉलेज नहीं है। और खाली ज्ञान प्राप्त करने से भी क्या फायदा, जब आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए और यदि उसका अपने जीवन में कोई प्रयोग नहीं तो उसका क्या लाभ। तो गीता को हम अपने जीवन में कैसे यूज करें, कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि गीता जो है वो हमारे धर्म का आध्यात्मिक खजाना है। गीता ये जो हमारा है वो क्या है, स्पिरिचुअल ट्रेजर है, आध्यात्मिक खजाना है। और अगर यहाँ पर ऐसे श्रीमद्भागवत ठाकुर कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि हमें सारा जो हमारा एजुकेशन है, सारा हमारा धन है वो लूट जाए, और फिर हमारे पास दो शास्त्र बाकी रहते हैं, वो कौन, गीता और भागवत, तो समझो हमारा कुछ नहीं हो जाए। समझो अभी तक हमारी संपत्ति हमारे पास है। तो संसार में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हमसे कुछ छिन जाता है तो दुखी होते हैं, लेकिन जब तक गीता है तो दुख का कोई कारण नहीं है। तो ये भगवद गीता एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आती है, इसको हमें बार बार पढ़ना है। क्यों, पहली बार जब आप भगवद गीता पढ़ोगे ना तो आप धृतराष्ट्र की तरह समझोगे। धृतराष्ट्र कैसे है, उनको कुछ समझ में नहीं होता, पहली बार गीता पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे, आगे तीसरी बार जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि ये तो रियल ज्ञान है जिससे हमें जीवन को चेंज करना है। चौथी बार जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि भगवान हमें सुना रहे हैं। और अगर सही आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतने बार तो गीता पढ़ने का समय नहीं, आधी जिंदगी गुजर गई अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, तो वास्तव में यदि गीता को समझना है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक शुद्ध भक्त के द्वारा यदि आप गीता पढ़ोगे तभी उसको समझ पाओगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भक्त्यानाम अभिजानन्ति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको गीता समझनी है तो केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, इसे श्रवण करना चाहिए किसी शुद्ध भक्त के द्वारा। तो एक बात यहाँ पर फिर भी डन है कि अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी तो जिंदगी में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं। और यदि आपने गीता पढ़ ली और उसको अपने जीवन में उतार लिया प्रैक्टिकली, तो बाकी जितनी भी किताबें जमा कर ली हैं उसे फेंक दो, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप जितना भी एजुकेशन प्राप्त करते हो, जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हो, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। वो आपको ये नहीं बताते कि आपके जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आप वो कौन, आप क्यों आए हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता सिवाय श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने ये सिखाया। तो वास्तव में हमारे लिए जो नॉलेज वास्तविक ग्रहण करनी है वो क्या है, श्रीमद् भगवद् गीता। तो श्रीमद् भगवद् गीता का पहला चैप्टर उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन का दुख, अर्जुन का प्रत्यम। अर्जुन तो तैयार होकर आए थे ना युद्ध करने के लिए, शंख बज गए और उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अर्जुन, कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कृष्ण ने वहाँ पर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने पितरों को, अपने गुरुओं को देखा तो उस समय दुख उस पर गंभीर हो गया और वो दुखी हो गया, कहने लगा कृष्ण इन सबको मार कर मैं राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता, राज्य तो छोड़ो, इस संसार का राज्य तो छोड़ो, अभी त्रैलोक के राज्य से तीनों लोगों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, धरती की क्या बात करते हो, तो फिर मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और क्योंकि मुझे यहाँ पर युद्ध करने से कितना पाप लगेगा, तो पाप का भागी होकर मैं यदि कुछ जीत भी जाता हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि मैंने कितना अपराध किया, पापी तो थोड़ा मिलेगी, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। अंतिम श्लोक 1.44 में अर्जुन कहते हैं ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगत में पाप करने के लिए यहाँ पर उद्यत हुए हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर चले हुए हैं। यहाँ पर पहला चक्र अर्जुन विषाद योग समाप्त है। तो यहाँ पर ये बात तो हमें समझनी है कि अर्जुन जब भगवद गीता सुनने के बाद अपने इतने महान दुख से बाहर निकला। अर्जुन का दुख क्या था जानते हो, हमें क्या दुख होता है कि मुझे अपने लोगों को सुख पहुँचाना है, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को या संसार में सुखी होना चाहते, लेकिन अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी जानते हो, उनको तो सबको मारना था और उस दुख से भी यदि वो उभर के बाहर निकल सकते हैं तो हमें संसार में यदि छोटे छोटे दुख है तो बोला हम क्यों नहीं भगवद गीता को श्रवण करके उन दुखों से बाहर निकल सकते। तो इतना सुनने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, इतना कहने के बाद अर्जुन तो दुखी होकर बैठ गया, लेकिन उसके बाद क्या कृष्ण ने अर्जुन को कहा कुतस्तु अगरिमलमिदं विषमे समुत्पस्थितं अनार्यनिष्ठं अचर्यं अचिन्त्यकरं। अर्जुन अर्जुन तुम्हारे हृदय में ये मलिनता आई कहाँ से, ये तुम पर सूट नहीं करती है, अनार्यनिष्ठं आर्यों को ये सूट नहीं करती है। अर्जुन तुम कहीं कंफ्यूज हो गए, अरे मैंने तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों का वध नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए और हमारे कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे, बड़े बच्चे नष्ट हो जाएंगे, पिंड दान नहीं मिले, इतना सब कुछ बताओ भगवान का बोलते मरीता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि हम यदि किसी चीज को अच्छा समझते हैं, डिसीजन कोई डिसीजन हम लेते हैं वो अच्छा है या बुरा है उसे अपने पॉइंट ऑफ विजन से नहीं देखना है, उसे गुरु साधु और शास्त्र के पॉइंट ऑफ विजन से देखना है। देखने में तो अर्जुन ने बहुत अच्छा बोला था लेकिन फिर भी अपनी बात को क्लियरिफाई करने के लिए अर्जुन वापस बोलते हैं 2.5 में कि आप मुझे ऐसा कैसे दे सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा कि मैं अपने गुरुओं के सामने खड़ा हूँ, गुरु न भक्तों ही महान भावान श्रेयो भक्तों भैक्षण अपनी है लोग हत्वार्थ कामान तो गुरु नहीं है वह भुंजी या होगा रुदिर प्रतिज्ञा। अगर मैं अपने ही गुरुओं को मार के कुछ खाऊंगा ना तो मुझे कैसा लगेगा कि मैं वो निकाला उनके रक्त से सना हुआ खा रहा हूँ। क्या तुम्हारे सामने यहाँ पर भगवान को वही सूदन कहते हुए अर्जुन कहते हैं कि आप भी तो केवल शत्रुओं का विनाश करते हो, क्या कभी आप आपके सामने यदि आपके दादाजी उग्रसेन आ जाए या आपके गुरु महाराज सांदीपनि आ जाए तो क्या आप ऐसे कर सकते थे उनके साथ? नहीं। तब जब आप मुझे ये करने के लिए कैसे दे सकते हो? मुझे जो रास्ता सही लगता है वो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यहाँ पर पहली बार अर्जुन ने जो डिसीजन दिया वही हमें सिखाता है कि यदि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यदि डिसीजन क्लियर नहीं होता है, यदि हमें समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं 2.7 में, कार्तण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि कौन्दर्व सम्मूढचेता यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शारीरं त्वं प्रपन्नम्। कि अब तो मैं अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गया हूँ, अपने फर्ज को भूल गया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मेरी आज्ञा का पालन थोड़ी ना करोगे। तब बोले नहीं, पहले मैं तुम्हारा दोस्त था, अब शिष्य अब मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, तुम्हारी शरण में आ गया। जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया, भगवान ने गुरु पद को स्वीकार किया और जोर से डांटने लगे। डांटने का अधिकार है गुरु को अपने शिष्य का। और कहने लगे 2.11 में, अशोचन अनुशोचन स्व प्रज्ञा वाला सभासदे गता सु ना गता सुष्य नाम शोचन से पंडिता। बातें पंडित तो जैसे कर रहे हो अर्जुन, परंतु काम तो बेवकूफ वाले कर रहे हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वो तो ना तो कभी किसी जीवित के लिए रोते हैं और ना ही कभी किसी मृतक के लिए रोते हैं। यहाँ पर भगवान ने हम सबको मूर्ख कहा है, क्योंकि हम सब किसके लिए दुखी होते हैं? या तो जो जिंदा है उनके कारण दुखी होते हैं, या जो मरे हुए हैं उनके विषय में सोच कर दुखी होते हैं। तो भगवान ने कहा ये तो बेवकूफ करते हैं। पहले ही लाइन में भगवान ने बता दिया कि देखो, दुखी जिसके लिए आप होते हो वो दुख का कारण नहीं हो सकते। भगवान सब कुछ यहाँ पर बताने से पहले जो बात बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सांख्य योग, और श्रील प्रभुपाद जिसको कहते हैं गीता का, ये समझ में आ गया जीवन सरल हो जाएगा और आगे के जितने भी चैप्टर है वो समझ में आते जाएंगे। लेकिन यदि सांख्य योग नहीं समझे तो समझो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस संसार के समस्त लोग जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं वो क्या है? ये शरीर, ठीक, इस भौतिक जगत से रिलेटेड वस्तु और व्यक्ति किसी को। लेकिन भगवान ने तो पहली बात में बता दिया कि नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और सांख्य योग में हमें क्या समझनी है कि हमारा ये शरीर और हमारी आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा कैसे है? जैसे एक गाड़ी और उसका ड्राइवर। ये गाड़ी जब कोई ड्राइव करता है तो ड्राइवर अलग होता है ना, गाड़ी तो अलग होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी के अंदर इतनी आसक्ति होती है, इतना प्रेम होता है कि रास्ते चलते वक्त यदि ड्राइवर सुरक्षित भी हो और गाड़ी पर कभी टच हो जाता है, उसको यदि स्क्रैचेस आ जाते हैं या उसको कुछ जगह उसकी लाइटें वाइटें टूट जाती हैं, तो उस अंदर वाले बैठे हुए व्यक्ति ड्राइवर को इतना दुख होता है जैसे गाड़ी को नहीं उसके हृदय को किसी ने फाड़ा है, उसने तोड़ा है, किसी ने उसको दिल से चोट लगती है। वो तो उसकी बेवकूफी है। लेकिन उस टाइम पर यदि उसका कोई मित्र उसे ये समझाता है कि देखो आप इतना दुखी मत हो, आप सुरक्षित हो ना, तो गाड़ियां तो दूसरी भी आ जाएंगी। उसी तरह से भगवान कहता रहे हैं कि ये शरीर का खत्म होना या ये शरीर का वापिस से जन्म लेना मरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मा को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर देखें कि हम हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं। गीता का पहला जो लेसन है उसमें हमें क्या समझना है, हु एम आई, मैं कौन है?
पिता को लगता है कि इससे पूछो हो आई हूँ
सिर्फ क्या है लेकिन लेकिन ये नाम तो समझो ऐसे है जैसे गाड़ी का कोई नंबर प्लेट होता है ना वो गाड़ी नहीं होती है लेकिन उसी तरह से हम लोग भी जन्म लेते तो हमें भी कोई नेम प्लेट मिल जाता है नाम मिल जाता है वैसे ही है। और उसके बाद आगे यदि मैं पूछूं कि आप कौन हो तो कहेंगे कि भाई मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं सीए हूँ मैं एमबीए हूँ लेकिन वो तो आपकी वो डिग्री है जो आपने यहाँ से प्राप्त की है आप स्वयं हो नहीं हो। यदि आप वास्तव में डॉक्टर होते तो जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन आप ऑपरेशन करते हो लोगों का इलाज करते वो तो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद यहाँ से प्राप्त की। उसके बाद यदि उनसे और भी पूछा जाए कि आप कौन हो तो बोलेंगे कि भाई हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं क्रिश्चियन हैं सिख हैं ये है वो है लेकिन ये तो वो धर्म है जिसके अंदर आपका जन्म हुआ है। एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर आपका जन्म हुआ तो आप सोचते हो कि मैं हूँ। वास्तव में आज कोई अगर हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो कल किसी और परिवार में जन्म ले सकता है जो आज मुस्लिम परिवार में जन्म लेती हूँ तो साइकिल चलता रहेगा ना तो वास्तविकता तो वो नहीं है। तो कोई ये बोलेगा कि हाँ मैं क्या हूँ ये जो दिख रहा है ना पांच फीट का वो मैं हूँ ये जो शरीर है ना वो मैं हूँ ये दो हाथ दो पैर दो आँख लेकिन असल में क्या है ये शरीर भी चेंज हुआ है। आज देखो मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है कि आपके आंखें चेंज करके दूसरी लगा सकते हैं आपका हार्ट चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं आपके लंग्स आपकी किडनी हर चीज जो है वो चेंज करके दूसरा लगाते हैं लेकिन जब उसको चेंज किया जाता है तो आप तो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऑपरेशन करके आंखें चेंज करते हैं तो क्या उसकी देखने की दृष्टि भी चेंज हो जाती है? अगर उसका किसी का हार्ट चेंज कर दिया जाता है तो क्या उसके इमोशन और भावनाएं भी चेंज होती है? इसका मतलब है कि आप वो नहीं हो जो ये दिख रहा है। तो असल में वो कौन है? ये शरीर ऐसे है जैसे हमारा मकान हम किसी घर में रहते हैं ना असल में हम आत्मा हैं और हम इस शरीर रूपी घर में रहते हैं। भगवान भी बोलते हैं नवद्वारे पूरे गृहि तो ये घर की तरह है। और ये घर भी कैसा जानते हो? किराए का घर है। किराए के घर में कैसा होता है कि मालिक मकान कभी भी आकर वहाँ से हमें निकाल सकता है कि भाई आपका टाइम पीरियड यहाँ से खत्म हो गया। और इसी तरह से हम भी इस शरीर में आए हैं और कभी भी इस शरीर से हमें निकाला जाएगा। तो बुद्धिमान वो है जो इस शरीर में रहकर कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसे एक परमानेंट हाउस प्राप्त हो सके। समझ रहे मेरी बात? ये शरीर एक किराए का घर है और यदि कोई किराए के घर पे रहता है तो उसका काम क्या है? वो इतनी अर्निंग करे इतना धन जमा करे कि उस धन के द्वारा वो अपना एक परमानेंट हाउस खरीद सके। हाँ बुद्धिमान तो यही है ना। तो इसी तरह से हमें भी इस शरीर को दिया गया है किराए का है लेकिन हमें हमारा वास्तविक परमानेंट घर तब मिलेगा जब हम इस शरीर में इस घर में रहकर कुछ ऐसा करेंगे। और वो क्या है? हर युग में परमानेंट हाउस खरीदने का एक अलग अलग तरीका होता है और इस कलयुग में केवल एक ही कार्य है जो करने से हमें हमारा असली घर प्राप्त हो सकता है और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और भगवान कहते हैं यदि आप इस मंत्र को जप करते हो तो आपको वो धाम प्राप्त होगा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो फिर लगता है कि भाई संसार में तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं बहुत सारे दुख होते हैं बहुत सारी तकलीफें होती है भला इसमें रहकर हमको कैसे उन तकलीफों को जूझते हुए कैसे हम भगवान को याद कर या भगवान का नाम ले। उसके लिए भगवान एक बहुत ही सुंदर श्लोक देते हैं। भगवान कहते हैं 2.14 में कहते हैं माता स्पर्शस्य कौन्तेय शीतोष्ण सुप्त गुप्त नाम आगमापायिनो नित्या कंसिस्टेंट स्वभाव है। वो त्रिलोकी के नाथ हैं और बोलते हैं जो दुख जो तकलीफ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो इस शरीर के लिए आ रही हैं और वो तो आएंगी ही आएंगी, उसको खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। आज हम हर जगह पर ये चाहते हैं कि कहीं से मुझे ये बात पता चले कि मेरे दुख कैसे खत्म हो। और लोग तो हमें धोखा देकर हमें झांसे में देकर बता देते हैं ऐसे करो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसे करो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये भगवान बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भगवानी करो। जो तुम्हें आज दुख मिल रहे हैं, जो तुम्हें आज तकलीफें मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार वो आपके भाग्य में है। आपका भाग्य भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ये दुख ये तकलीफें ये प्रॉब्लम आपको मिली है, किसी और को नहीं मिली। इसका मतलब है क्या भगवान ने पक्षपात किया? नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान सिर्फ न्याय करते हैं। तो जिसके कर्मों के अनुसार जिसको दुख मिल रहे हैं, जिसको संकट मिल रहा है, जिसको तकलीफें मिल रही हैं, वो तो मिलनी ही है। लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद क्या होगा जानते हो? भगवान यदि आपकी नाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नाव में कभी तूफान नहीं आएगा। तूफान तो आएगा, लेकिन यदि आप भगवान को अपने उस सफर में हम सफर बना लेते हो तो फिर उस तूफान में आपकी नैया कभी डूबेगी नहीं। तो यदि हमारे दुख है संकट है हमारे भाग्य के अनुसार यदि हमें मिलते हैं, साथ साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण को केंद्र बनाकर जीते हैं, तो हमारे हिस्से के दुख भी हमें दुख नहीं लगते क्योंकि सब भगवान साथ होते हैं। ये कुंती महारानी कहते हैं भवता दर्शनम यत् साथ न पुनर्भव दर्शनम, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो जाए तो मेरा दुख कहाँ महसूस होता है। इसलिए भले दुख आए लेकिन तुम्हारा साथ होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं भाई ये तो शरीर के लिए होते हैं तो तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम आत्मा हो। आत्मा की क्वालिटीज बताते हुए भगवान पूरा दूसरा चैप्टर बताते हैं, न जायते विद्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवता या न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को कभी जन्म नहीं होता, आप आत्मा, मैं किसी और की आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके बारे में कृष्ण कहते हैं ना कभी आपका जन्म होता है, ना कभी आपकी मृत्यु होती है, ना कभी ऐसा हुआ है, ना हुआ था और ना ही कभी होगा। आपको कभी कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकता। आप सोचो ना, किसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, वो दुख आपके शरीर को मिल रहा है। नैनम छिन्न शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम प्लेगन त्यागो न शोषयति मारिका। आत्मा को कभी भी कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकता। और आत्मा के लिए और शरीर के डिफरेंस के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया 2:25-22 में। भगवान कहते हैं देखो ये शरीर है ना, वो एक वस्त्र की तरह है। जिस तरह से ये वस्त्र है, जिस दिन ये कपड़ा बना था उस दिन ये डिसाइड हो गया था कि एक न एक दिन इसे फटना है। उसी तरह से जिस दिन ये शरीर आपको मिला था उसी दिन ये डिसाइड हो गया था एक न एक दिन उसे तो जो काम होना ही है उसे तो स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए दुखी होने की क्या जरूरत है। राजांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो आत्मा और शरीर का भेद जब समझ में आने वाला है तो वहाँ पर ये बात समझ में जो भगवान बताते हैं
के 227 में कहते हैं जातक से ही ध्रुव मृत्यु
ध्रुवम जन्म मृत्यु
जिसका जन्म हुआ है उसको तो एकदम एक न एक दिन अवश्य मरना है। तो मृत्यु का डेफिनेशन जो है वो समझना बहुत आवश्यक। अपना प्रॉब्लम क्या है जानते हो, जब किसी का जन्म होता है तब हम खुशियाँ मनाते हैं और जब किसी की मृत्यु होती है तो दुख प्रकट करते हैं। टोटल मृत्यु दुख करने की बात नहीं, एक बात समझने के लिए कहीं मृत्यु और जन्म को हम किस तरह से समझेंगे। आपने देखा एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम को जानते सब, वो क्या करता है कभी राइट साइड जाता है तो कभी लेफ्ट साइड जाता है, कभी राइट साइड जाता है तो लेकिन समझना क्या है कि जब कभी वो राइट साइड जाता है तो असल में वो राइट साइड पर नहीं जा रहा है बल्कि वो लेफ्ट साइड जाने की एनर्जी को प्राप्त करता है। और जब वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो वास्तव में लेफ्ट साइड नहीं जा रहा बल्कि राइट साइड जाने की एनर्जी को ग्रहण कर रहा है। उसी तरह से जन्म और मृत्यु है, जब कहीं पर जन्म होता है तो असल में वो जन्म नहीं हुआ है बल्कि कहीं पर मृत्यु हुई है उसीलिए जन्म हुआ है। और जब कहीं पर मृत्यु होती है तो इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं तो उसका जन्म हुआ है। आज हम सब जो यहाँ पर जन्म लेकर आते हैं ना, असल में कहीं पर मरे थे और जब वो जन्म लेते हैं ना वास्तव में दुख का, तो दुख की बात तो ये है बेचारा बाप के जन्म में से जरा व्याधि के चक्कर में फंस गए। जब मृत्यु होती है तो सेलिब्रेशन करना चाहिए उसके लिए जो कि अपने जीवन के वास्तविक गोल की ओर बढ़ा, चार कदम आगे बढ़ा है ना। अगर हम यहाँ पर आए हैं और सही जीवन गुजारते हैं तो क्या होगा कि हम जिस सिचुएशन में है, भगवान बोलते हैं कि अगर आप अपनी भक्ति को पूरा नहीं भी करते तो भी पुण्य लोकों में जाओगे और जिस अवस्था में हो उससे ऊपर भी स्टेज पर पहुंचोगे। अगर भक्ति कर रहे हैं फिर तो मरने को भी सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि जिस सिचुएशन में है उससे तो आगे ही होंगे। लेकिन हमको दुख क्यों होता है जानते हो, क्योंकि हम उस व्यक्ति को उसी मकान में ढूंढते हैं जिसमें पहले रहता था। हमको दुख होता है कि भाई इसमें तो वो रहता ही नहीं है, लेकिन वो तो उस मकान को छोड़कर एक दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया है, कहीं और जन्म हो गया है, उसका जीवन शुरू हो गया है और वहाँ पर वो अपने सफर पर आगे निकल गया है। ऐसा कैसे जानते हो कि आपका बच्चा फिफ्थ क्लास में पहले पढ़ता था और एग्जाम हुए कल वो सिक्स क्लास में चला गया और आप फिफ्थ क्लास में जाके रोते हो अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, और मॉडल के सिक्स में चला गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जो है वो जन्म और मृत्यु को बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है आगे हमें बताते हैं कि आत्मा और शरीर को भेद को समझने के बाद अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है भगवान, यदि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं संसार के लिए कार्य क्यों करूँ, युद्ध क्यों करूँ, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सारे कार्य नहीं करने चाहिए। तब भगवान एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप क्षत्रिय हो इसलिए आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। और भगवान एकदम यूं प्रण लेते हुए कहते हैं कि देखो, आप भले ही आत्मा हो लेकिन कर्मों के अनुसार आपको जिस जगह पर जन्म मिला है उस जगह पर आपका कुछ स्वधर्म है। तो स्वधर्म विचारेक्ष न विकंपित अर्हसि, अपने धर्म को अवश्य पूरा करना चाहिए और क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें क्षत्रिय के धर्म को पूरा करते हुए युद्ध तो अवश्य करना चाहिए। फिर एक बहुत ही सुंदर लालच देते हुए 37 में कहते हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि और तस्मात् उत्तिष्ठ बोलते युद्धाय कृतनिश्चय, अगर तुम जीत गए तो संसार में राज्य मिलेगा, हार गए तो फिर स्वर्ग में राज्य करोगे। तो तुम्हें तो क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए और उसके साथ साथ फौरन से दूसरी बात बनना है कि नहीं मालूम अब तक तो मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया, अब मैं सांख्य योग बता, अब मैं बुद्धि योग बता रहा हूँ। अगर तुम बुद्धि योग के द्वारा कार्य करोगे तो क्या होगा जानते हो? 2.40 नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ज्ञायते महतो भयात्। इस कोशिश में थोड़ी सी थोड़ा सा नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, और थोड़ा सा यदि भक्ति योग को आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? आप बड़े से बड़े महान लोग से भय से छूट जाओगे। अर्जुन को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है कि मुझे भगवान वापस से कहते हैं कि आपको भक्ति करनी चाहिए। फिर भगवान 47 में जीने का एक तरीका सिखाते हैं अर्जुन को और कहते हैं 2.47 में, देखो अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हें अपने कार्यों के ऊपर तो अधिकार है परंतु फल के ऊपर तो, फल के तुम अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने कार्यों को अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद भगवान एक बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में ख्वाहिशें तो आती रहती हैं, लेकिन विषय मेरी वर्तन्ते निहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। इस भौतिक जगत की चीजें तब तक ही आनंद देने वाली लगती हैं जब तक कि वास्तविक आनंद को कभी चखा नहीं होगा। अगर किसी ने संसार की चीजों को, अगर किसी ने आनंद, किसी को आनंद आता है, ये व्यक्ति चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो वो तब तक ही है जब तक उसने आध्यात्मिक रस को चखा नहीं है। इसी भगवान कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से बड़े ही निवृत्त हो जाए, अगर संन्यास भी ले लोगे ना, फिर भी एक हृदय के अंदर इच्छा तो रहेगी कि वो नहीं किया, वो मजा नहीं लूटा, ये नहीं आनंद लिया, लेकिन आगे भगवान कहते हैं उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थित। उत्तम रस क्या है? जब हम भगवान से प्रेम का आनंद लेते हैं, जब कोई जीव भगवान से प्रेम करता है उसमें जो आनंद आता है, फिर संसार की सारी चीजें, सारी वस्तुएं, सारा आनंद तुच्छ लगने लगता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, देखो भौतिक वस्तुओं का तो ऐसा है कि जिस जिस वस्तु को आप सोचोगे वही आपको अट्रैक्ट करेगी और फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा करोगे। आप अपने जीवन में जरा झांक के देखो कितनी दफा तो चीजों को प्यार किया, क्या जिन जिन चीजों को चाहा, जिन जिन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा की, वो सारी चीजें आपको मिली? नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो वस्तु मैं चाहूँ वो सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो। इसे भगवान कहते हैं तो तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ध्याय तो विषयान को संगतेषु बजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधान भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश। इसलिए भौतिक वस्तुओं का यदि सोचोगे, उनको प्राप्त करने की इच्छा करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए अगर आनंदित होना चाहते हो तो उसका एक सूत्र बताते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 71 है। बहुत ही अद्भुत श्लोक है और उसमें भगवान जानते क्या बताते हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ में आता है? जोर से बताओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम।
देखो आजू बाजू में यदि कोई सोता हुआ दिखाया जाएगा तो उसको जगा देना, ठीक? तो भगवान उसमें कहते हैं कि आपको असंतुष्टि जानते हो कब होती? अच्छा मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपको भूख पता है कब लगती है? भूख कैसे पता? पेट के अंदर जब खाली होना है तब भूख लगे समझो, ठीक है? पेट भरा होगा तो भूख नहीं लगेगी ना। उसी तरह से इच्छा कब उत्पन्न हो रही है? जब आपको कहीं खाली पन का एहसास होता है। आपको
को लगता है कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है। जैसे अभी आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, समझ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत ही अच्छा एक मोबाइल फोन है, और आपको लगता है यार ये मेरे पास नहीं है। जिस टाइम पर एक खालीपन का एहसास होता है, उस टाइम पर आपको लगता है कि ये मुझे मेरे पास नहीं है, और नहीं है तो मुझे उसे प्राप्त करना। लेकिन भगवान कहते हैं ये पता है क्यों लगता है, क्योंकि आपको रियल में पता नहीं है कि आप कौन हो, और आप अपने आप को शरीर मानते हो, तभी ही संसार की चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हुए बोलते हो कि ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हु एम आई, तो आपकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएगी। ख्वाहिशात को पूरा करने से कभी भी ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। जानते हो कैसे? वो तो ऐसे है जैसे भड़कती हुई अग्नि में घी डालते जाओ तो क्या वो शांत हो जाएगी? वो तो और भी भड़केगी। लेकिन ख्वाहिशात को समाप्त कैसे करना है? अपने रियलिटी को जानते हो, भगवान कहते हैं वास्तविकता को समझ जाओगे कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर कोई ख्वाहिश आ भी जाती है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सशांति आपनोति न कामकामी। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से दूसरे चैप्टर में सांख्य योग बता के आज हम अभी कर्म योग की ओर जा रहे हैं, जिसमें भगवान से पहले चतुर अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं ज्यायसि चेत् कर्मणस्य मतः बुद्धिर् जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मम प्रियजयसि कृष्ण। अब तो बोलते हो कि कर्म योग से ज्यादा बुद्धि योग इम्पोर्टेंट है, फिर आप मुझे इतने खतरनाक कर्म को करने के लिए क्यों कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो मुझे ये कार्य नहीं करना? तो भगवान अर्जुन को एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि देखो कर्म करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कर्म किए बगैर एक व्यक्ति बिल्कुल भी रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षण अभी जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कार्य किए बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन कार्य को आप अकर्म बना सकते हो। भगवान यहाँ पर तीन तरह के कर्मों के विषय में बताते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब आप हर वो कार्य जिसका कोई रिजल्ट मिलता है वो अच्छा होता है या कैसा अच्छा रिजल्ट होता है, जो शास्त्रों के अनुसार जब आप करते हो तो उसको कर्म कहते हैं, और शास्त्रों के विपरीत यदि आप कार्य करते हो तो उसको विकर्म कहते हैं। और इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत कार्य करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन एक कर्म होता है अकर्म, और अकर्म का मतलब होता है वो कार्य जिसे आप करो और उसका आपको रिजल्ट ना मिले, मतलब आपको बंधन में ना, क्योंकि रिजल्ट में क्या बंधन? अगर आपको सोने का भी मिलता है तो भी बंधन तो बंधन है। सोने की जंजीर में बांधोगे अच्छे कर्म, फिर भी जन्म तो लेना पड़ेगा, यहाँ पर बुरा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, फिर मृत्यु आ जाएगी, स्वर्ग में जाएंगे, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, तो कुछ भी होगा बंधन तो समाप्त नहीं होगा। तो भगवान इस कर्म बंधन से निकलने का बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं। 3.30 में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाचना सुनकर मुच्छते सर्व के विषय भुंजते सुगम पापा के वजन त्याग का कारण। बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं देखो आप अगर अकर्मी होना चाहते हो तो उसका स्टार्ट भोजन से करो। जो आप खाते हो ना सबसे ज्यादा कर्म उसी के लिए बनता है, अपराध सारे उसी से होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय। यदि आप अपने अपराधों को खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए पहला काम करो, जो भी खाओ पहले भगवान को ऑफ असर करो, क्योंकि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वो तो भुंजते त्वम पापा, वो तो पाप खाते हैं। इसलिए यहाँ से ये तो सीख के जाना है कि यदि हमें पाप के फल का भागी नहीं बनना है तो आज के बाद कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी है जो भगवान को ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि भले वो वेजिटेरियन की क्यों न हो, भगवान तो कहते हैं कि वो पाप है। भगवान ने कहा भुंजते त्वम पापा, और पाप का परिणाम पनिशमेंट है ना। पाप करेंगे तो दंड मिलेगा, फिर रोएंगे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अरे वो जो पाप करके आए थे, जैसे संसार में अगर यहाँ पर भी हो, किसी के घर में कुछ भी रखा हुआ होगा, आप उठा लोगे अपने पॉकेट में डालोगे अपने पर्स में डालोगे तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा। ये सब संसार भगवान का बनाया हुआ है, इसमें कोई भी चीज का उपयोग करना है पहले भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, वरना तो अपराधी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ये मत कहो कि मुझे अच्छा लगता है, अगर भगवान को ऑफर नहीं कर सकती तो भी मैं खाऊंगी तो उसके बदले में अवश्य हमें दंड भोगना पड़ेगा। कल आंटी को बोल रही थी बस वो पक्का है तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मेरा मन नहीं रुकता है, मैं सोचती हूँ मेरा हृदय मेरा मन जो है वो खुद से उसमें से चला गया है तब मैं छोड़ूंगी। क्या मन खुद से चला जाएगा? जितना जितना खाओगे उतना उतना हवस होगी। कोई भी वस्तु आप जितनी जितनी उसका भोग करोगे ना उतना उतना उसकी हवस बढ़ती जाएगी। मैंने कहा अम्मा 80 साल की हो गई कब होने जाएगा, अभी से छोड़ दो। तो जो जो वस्तु हम भगवान को ऊपर किए बगैर खाते हैं उन्हें हमें छोड़ना होगा, तभी भगवान कहते हैं हम अपराध से बच सकते हैं। उसके बाद भगवान बहुत ही सुंदर तीसरे अध्याय में बताते हैं तस्मात् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तम् यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती। कोई भी चीज आप गलत तब करते हो जब उसके रिजल्ट से आपको कुछ मतलब होता है। अपराध तभी होता है जब आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, लेकिन यदि रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने कर्तव्य ही पालन करने हैं, तो फिर कोई कर्म गलत हो ही नहीं सकता, कोई अपराध कर ही नहीं सकता। भगवान बोलते हैं देखो अर्जुन, तुम्हें दूसरों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कर्म करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। भगवान एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं नमे पाठासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हारा साथी बनकर अपना कर्तव्य निभा। ये त्रिलोकी का नाथ है, और आज की लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो वो ड्राइवर बनकर अपना कार्य कर रहा है और ये बता रहा है कि कोई कार्य भी छोटा नहीं होता है। आप जो कार्य कर रहे हो यदि उसको प्रेम से कर रहे हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए कि उस कार्य के बदले में भले मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, लेकिन ये कार्य क्योंकि मेरी ड्यूटी है वो मुझे करनी है, तो इतना भगवान होकर जब वो ऐसा काम कर सकते तो हमारे लिए कोई काम कैसे छोटा हो सकता है। तो भगवान यहाँ पर तीसरे अध्याय कर्मयोग के बारे में बता रहे, देखो कोई भी कार्य आप करोगे ना तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सारे लोग आपको अच्छा बोलेंगे, है ना। कभी भी ऐसा कभी कभी बोलेंगे कोई भी कार्य करते वक्त हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोग, तो दूसरे लोग हमें क्या कहेंगे वो सोचकर हमको अक्सर ऐसा लगता है ये नहीं करना चाहिए। देखो आप कोई भी कार्य करते हो भले वो कितना ही अच्छे तरीके से आप करते हो, उसमें से क्या होगा 33% लोग जो आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और 33% लोग जो होंगे वो आपको अपोज करेंगे। ये करना छोटी सी बात है, मेरी अपनी माला है मैं लेकर घूमूंगी, अगर तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो अच्छा कर रही है वो अपना माला की लेकर घूम रही है, लोगों को पता चल रहा है हरे कृष्णा है, कोई बोले ये क्या एक्सपोज करके देती है इतना ज्यादा है ना, वही से करने की जरूरत है। और 30% लोग को आपके कार्यों की कोई इंटरेस्ट नहीं, वो लुप्त हो गए, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। तो आप जो कार्य कर रहे हो वो अच्छा है, वो इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वो इससे डिसाइड होगा कि गुरु साधु और शास्त्र ने उस कार्य को करने के लिए आपको परमिशन दी है या नहीं है। आप वो कार्य जो कर रहे हो वो धर्म के अनुसार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन धर्म का कार्य उसकी डेफिनेशन क्या है, भगवान बताते हैं कि धर्म आप तभी कर सकते हो जब आप ये समझ जाओ कि मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध भगवान से है, और ये सोचकर जब आप कोई कार्य करते हो तभी वो धर्म का कार्य होता है। और जब आप धर्म का कार्य ये सोचकर करते हो कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो वही परफेक्ट कार्य है। और उस टाइम पर सबसे बड़ा लाभ क्या होता है जानते हो? देखो, कार्य क्षत्रियों का युद्ध करना था और युधिष्ठिर भी युद्ध कर रहा था, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, यानी पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन पांडव धर्म पे युद्ध कर रहे थे। उसका रिजल्ट क्या था कि आज कृष्ण उसके साथ थे। तो कृष्ण जब हम धर्म का कार्य करेंगे तो डेफिनेटली ये भगवान ने कहा है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र, जहाँ पर कृष्ण धर्म होगा वहीं पर कृष्ण होंगे, जहाँ पर कृष्ण होंगे वहीं। तो अगर हम धर्म के साथ कार्य करेंगे तो इस बात की तो गारंटी है कि कृष्ण उस दिन उस कार्य में हमारा साथ देंगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि गलत कार्य हमें आकर्षित करेंगे, कोई बोलेगे अब ये कार्य करो आपका कितना फायदा होगा, ये कार्य करो आपका कितना लाभ होगा। भौतिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हमें लगेगा कि उस कार्य में तो हमें बहुत सारा लाभ होने वाला है तो हम ये कार्य क्यों ना करें, लेकिन उस टाइम पर भले ही आपको कितना ही धन प्राप्त हो उस कार्य से, भले ही कितनी सफलता प्राप्त हो, भले ही कितना यश प्राप्त हो, लेकिन कृष्ण आपका साथ नहीं देंगे। और जब कृष्ण आपका साथ नहीं देंगे वो अधर्म का कार्य करते हुए, तो फिर आपकी हार आवश्यक होगी। कृष्ण जिस कार्य में आपका साथ नहीं देंगे तो वो चाहे कितना ही कार्य आपको लगे कि इसमें तो कितना ग्लैमर है, कितना आनंद है, कितना वो है यश है, लेकिन उसमें अंतिम जो है विजय वो कभी भी आपकी नहीं हो सकती। जैसे लगा था दुर्योधन को कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है पांडवों को चीट करके, लेकिन अंत में निकल गया। तो लगता है कभी कभी अधर्म के रास्ते के पास चलते चलते लोगों को सक्सेस मिल रही है, आपको लगता होता है कि वो कितना गलत करते हैं, फिर भगवान उनको सजा नहीं देते, उनके साथ क्यों नहीं बुरा होता, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन कैसा करता है ये डिसीजन लेने का या उनको दंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और ना ही दूसरों के कर्मों की जांच करने का आपको अधिकार है। जो जैसा कार्य करेगा उसको दंड देने का अधिकार भगवान का है। तो दंड देने का अधिकार आपको नहीं है, भगवान स्वयं दंड देंगे। आप धैर्य से प्रतीक्षा कर उनके पाप का घेरा भरने को दो। भगवान का भोजन क्या जानते हो? भगवान ईगो को खाते हैं, जो भगवान जो अहंकार होता है ना वो खाते हैं। भगवान किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए राम ने अहंकार किया, कंस ने अहंकार किया, हिरण्यकशिपु ने, तभी तो अर्जुन के मन में भी अहंकार हो गया कि युद्ध मेरी शक्ति से जीता। तो कभी गोपियों को अहंकार हो गया, भगवान सबका अहंकार लूट लेते हैं। तो असल में यहाँ पर हमें समझना ये था कि कार्य हमें क्यों करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम अपराध कर बैठते हैं, तो उसका क्या कारण है? अथ केन प्रयुक्त पापम से अति पुरुष अनिच्छन अपि वाशेय बलादिव नियोजित। कृष्ण जबरदस्ती हमसे अपराध कराता है, हम अपराध नहीं करना चाहते। तो भगवान इसका एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो ये तो वो काम है जो आपसे अपराध कराता है। काम ये जो इच्छा है, ये जो डिजायर्स है ना, वो आपसे अपराध कराते हैं। तो काम क्यों होता है, इच्छा क्यों होती है, उसका भी एक ही कारण है, क्योंकि खुद को हम वास्तव में आत्मा नहीं समझते। डिजायर कभी आत्मा की नहीं हो सकती, आत्मा इच्छा करती है, इच्छा करने का पावर आत्मा के पास है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना, इसलिए अपने आप को शरीर समझते, शरीर की डिमांड को अपनी इच्छा समझती है। आप बताओ सुंदर देखना क्या हमारी आत्मा की डिजायर हो सकती है, अच्छी ड्रेस पहनना क्या हमारी आत्मा की डिजायर हो सकती है, बड़ा सा घर होना क्या हमारी आत्मा की डिजायर हो सकती है, एक अच्छी सी गाड़ी होना क्या हमारी आत्मा की डिजायर हो सकती है। ये सारी जो डिजायर्स हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और अपने आप को शरीर मानती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखो ये कामना जो है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि जितनी जितनी इच्छाएं हम करते जाएंगे और इच्छाओं के जाल में इतना फंसते जाएंगे कि आगे जो हम अपनी रियलिटी है उसकी ओर कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि जीवन तो इसी में गुजर जाएगा ना। पहले सोचेंगे एक मुझे बाइक चाहिए, बाइक मिल जाएगी, फिर बोलेंगे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, फिर बोलेंगे कि मुझे है ना इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, उससे बड़ी हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, इच्छाएं कभी खत्म होगी क्या, और इच्छाएं पूरी करते करते जीवन का सत्यानाश हो जाए। तो जितनी जितनी इच्छाएं करते जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि इस काम को तुम अपना अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो। हम इच्छाओं को कहाँ पर जगह देते हैं, अपने हृदय। भगवान ने उन इच्छाओं को अर्जुन को बोला, अर्जुन ये दुर्योधन तुम्हारे शत्रु नहीं है, कौरव तुम्हारे शत्रु नहीं है, इच्छाएं सबसे बड़ा शत्रु होते हैं, इसलिए अर्जुन इच्छाओं को जरा दूर रखना चाहिए। और ये काम से जूझने की जो बातें हैं भगवान चैप्टर नंबर 4 में कहते हैं, ये तो मैं शुरू से बताता हूँ, ये खाली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इच्छाएं। तो मैंने स्टार्ट में ये वाला ज्ञान किसको दिया था, चैप्टर नंबर 4 में ज्ञान देते हुए ज्ञान योग में भगवान कहते हैं एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान् मनोरे प्रावो मनोरीक्षा करे भवि। कि सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को तो दिया, और इस तरह से ये परंपरा चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो परंपरा टूट गई और सत्येवायम् मया तेन योग प्रोक्त पुरातना भक्तो सिंह सखा चेति रहस्यम् ये तदुत्तम। और वही परंपरा को जोड़ रहा हूँ मैं तुम में, और तुमसे मैंने ये ज्ञान वापिस रीस्टार्ट इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे अंदर दो क्वालिटीज हैं, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता रहा हूँ। और उसके बाद अर्जुन तो एकदम कंफ्यूज हो गया, आपने ये ज्ञान सुनाया था, आप तो मेरे साथ जन्म लिए और सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, फिर मैं कैसे मानूं कि आपने पहले ये ज्ञान अर्जुन को दिया और सॉरी सूर्य देव को दिया। तभी भगवान एक सुंदर सौंदर्य इसका देते हैं, कहते हैं श्लोक नंबर 5 में कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम् वेद सर्वाणि नचोद्वेत्थकलङ्कः। अर्जुन तुम्हारे और मेरे तो बहुत सारे जन्म हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे से डिफरेंट हूँ, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। सब बोला क्यों तुम बार बार जन्म ले, तो तुम्हें याद है, तुम जन्म क्यों ले तो बार बार। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, धर्म जोर पकड़ता है, तब तक मैं वापिस आता हूँ दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। लेकिन श्लोक नंबर 9 में भगवान अपने जन्म और कर्म के विषय में एक बहुत ही टॉप सीक्रेट बात बताते कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनैति मां एति सोऽयम्।
देखो अर्जुन, वैसे तो सबका जन्म होता है, कार्य होते हैं, लेकिन मेरे कार्य साधारण नहीं है।
तुम लोग सारा दिन लोगों के कार्यों की चर्चा करते हो ना, उसके बेटे ने ये किया, उसको बेटा पैदा हुआ, उसके यहाँ पर ये हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया। हम लोग लोगों की बात करते हैं ना, तो लोगों की बात करते जो भगवद्गीता पढ़ने के लिए सीरियस होगा, हृदय से पढ़ेगा, इच्छा करेगा, उसको हम फ्री में भगवद्गीता देगा कार्य शो पे। और जो सीरियस नहीं होगा वो पैसों के देगा, लेकिन हम लोग को दान देना चाहिए ईश्वर को।
तो हाँ,
भगवान ने कहा कि यदि मेरे बारे में जानोगे, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनैति मामेति सोऽयम्, यदि वो देह को त्यागेगा तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए आपको आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे विषय में जानो। और उसके बाद चौथे अध्याय में भगवान यज्ञ की महिमा बताते हैं, और बताते हुए ये कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्वम् सर्वं ज्ञानम् प्लवेन सृजनम् सप्तरिष्यति। कि आप भले सबसे बड़े पापी ही क्यों न हो, लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप उन पापों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के विषय में कहते हैं, और कहते हैं श्रद्धावान भवते ज्ञानम् तत्पर संयते इंद्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परम शांति अचिरेण आनिकल्प्यते। सारी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है कि जीव को ज्ञान नहीं है कि वो वास्तव में कौन है, इसलिए श्रद्धा से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन क्या ये जान लेना काफी है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है? भगवान ने कहा नहीं, काफी नहीं है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा तो उस टाइम पर तत्पर संयते इंद्रिय, फिर आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। जब आप भक्त बन जाते हो तब आपको अधिकार भी नहीं रह जाता कि आप गलती करो, क्योंकि आपको ज्ञान पता चल गया ना कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को भला क्या पड़ी है कुछ गलत कार्य करने की, किसी को दुखी करने की, किसी को ऐसे शब्द बोलने की जिससे उसको दुख पहुँचे। जब तक आपसे दूसरे परेशान हैं तब तक समझो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आत्मा तो किसी के लिए कष्टदायक सोच नहीं सकती, किसी का बुरा कर नहीं सकती, वो तो आनंद से जीती है। आनंद स्वयं खुद भी सुखी रहती है और दूसरों को भी आनंद करती है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर आत्मा समझ कर सबके साथ इक्वल रहना है तो ये ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं यदि ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा जानते हो? 4:40 में भगवान बताते हैं कि यदि आपने ये शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? अज्ञश्च अश्रद्धधाश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशय आत्मना। यदि आप अज्ञानी रह जाओगे और इस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखोगे तो इतना तो जान लो कि ना यम लोको अस्ति न परो न सुखं संशय आत्मना, ना तुम्हें कभी इस संसार में सुख मिलेगा और ना ही कभी दूसरे किसी दूसरे जगत में जाकर सुखी। सुखी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और उसके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसके बाद भगवान कर्म योग को भक्ति योग करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में भगवान कर्म योग यानी कृष्ण मानामृत में कर्म को बताते हैं कि देखो आप जो भी कार्य करो वो ये सोच कर करो कि वो भगवान की खुशी के लिए है। तो वो कैसा है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि महाराजा अकबर उनके दरबार में एक म्यूजिशियन होते थे जिनका नाम था तानसेन। तो वो रोजाना महाराजा अकबर को बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाते थे। एक बार अकबर ने कहा कि
आपकी एक तानसेन, मेरी इच्छा है कि मैं आपके गुरु महाराज से सुनना चाहता हूँ। तानसेन के गुरु महाराज को हमने नाम दिया, उनके गुरु महाराज का नाम था स्वामी हरिदास। तो बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं उनका सुनना चाहता हूँ। बोला ठीक है। तानसेन ने कहा, उनको लेके गए सफर में, और लेकिन राजा को बोला, देखो हमको बताना नहीं कि आप राजा हो, क्योंकि वो राजाओं से मिलते नहीं है, हम साधारण, आप मेरे साधारण मित्र बन के चलो। बोला ठीक है। जब तानसेन राजा अकबर को लेके जाते हैं तो वहाँ पर लेके गए, उनको बिठाया, बोला गुरु महाराज हमारी इच्छा, ये मित्र है, इनकी इच्छा है आपका संगीत सुनने की। तो बोला ठीक है, आप प्रतीक्षा करो। स्वामी हरिदास ने उनको प्रतीक्षा करने के लिए भेजा। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, राजा तो थक के बोला इतनी क्या है, नहीं था, दो तीन दिन गुजर गए, हम लोग वहाँ से अपने राजधानी को छोड़ के आए हैं, ये तो कुछ सुनाई नहीं रहे। तब तानसेन ने कहा, देखो ऐसा है कि ये भी मेरे गुरु महाराज हैं, तो मैं इनको ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, अभी उन्होंने बोला है प्रतीक्षा करने के लिए, तो कुछ दिन और प्रतीक्षा करते महाराज। तो प्रतीक्षा कर रहे थे, अचानक एक रात हुई, तानसेन भी सो रहे थे, राजा अक्बर भी सो रहे थे, अचानक से स्वामी हरिदास ने संगीत प्रारंभ किया, और वो म्यूजिक जो उन्होंने प्रारंभ किया तो ऐसा था एकदम अमेजिंग ऑसम, जो उनके शब्द निकल रहे थे, वो जो बजा रहे थे वो इतना इतना आनंददायक था, जैसे ही राजा की आँख खुली, उसने तानसेन को बुलाया, जगाया, ये सुंदर शब्द, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। वहाँ पर गए और देखा, पूरी रात से देख कर स्वामी हरिदास भगवान को स्मरण करके गा रहे हैं, तानसेन सुन रहे हैं, गुरु महाराज यहाँ तक के गुरु महाराज जब वो सुन रहे थे तो रोमांच हो रहा था, नेत्र से शुरू निकल रहे थे, हरिदास जो उस टाइम पर उनके अंदर जो प्रेम के विकार हो आ रहे थे, उनको देख कर उसको लगा कि इतना आनंद तो जीवन में मुझे कभी भी सुनकर नहीं आया। तो उतना सुंदर उन्होंने संगीत सुना, तो संगीत समाप्त हुआ, सुबह को जब राजा ने और तानसेन ने अलविदा कहा गुरु को, और फिर वापस जब वहाँ जा रहे थे, रास्ते में अकबर महाराज जो है वो तानसेन से पूछते हैं कि तानसेन, ये जो स्वामी हरिदास है वो तो तुम्हारे गुरु है ना। हाँ राजा, इन्होंने जो रात को गाना गाया वो आपको भी सीखा होगा ना। हाँ मुझे सिखाया है। तो फिर तुम अपने आप है वो ये मेरा गाना क्यों नहीं गाते हो, ये तो कितना अच्छा है। तभी तानसेन कहते हैं कि नहीं राजा, ये तो गाना मैंने बहुत बड़ी गाया वहाँ पर। अच्छा, मुझे उतना आनंद तो कभी नहीं आया जितना की रात को आया था। तब उसका एक सुंदर सा उत्तर तानसेन देते हैं, एंड दैट इज के राजा, मैं गाता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए, और मेरे गुरु गाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। इसलिए जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो उसके अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो कार्य हम स्वयं में कर रहे होते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं फिर वो कार्य भगवान हमसे करवा रहे होते हैं, और जब हम वो कार्य भगवान को सरेंडर करते हैं तो मैरिकल्स होते हैं। जिस तरह से श्रील रूपा जी 70 years old में एक इतना वृद्ध व्यक्ति, जो आज हम सोचेंगे 70 years की एज में अपने बिस्तर से उठने से पहले भी 10 दफा सोचते हैं, और वो अमेरिका जैसी स्थिति में जाते हैं जहाँ पर उनका कोई सामने वाला नहीं है, उनके पास कोई साधन भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कार्य कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो वो खाली हम निमित्त होते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, जीवन तो आनंदित हो जाता है उस समय जिस समय हम अपनी महत्व आकांक्षाओं को छोड़कर भगवान के लिए जीना प्रारंभ को कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 5.22 में कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये ही संकट लाभ होगा, दुख में एवं आर्यंतर नरेशु रमते बोला, हर वो वस्तु जिससे आप सोचते हो कि ये वस्तु
मुझे आनंद देगी, इससे मुझे सुख मिलेगा, वही वस्तु आपके दुख का कारण बनती है. एंड दैट इज प्योर. जीवन में हमारा अनुभव है कि जिस जिस वस्तु को हमने प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम किया और वही वस्तु हमारे दुख का कारण बनती है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जानते हो? हमारी संतान. हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हमें सुख मिलेगा, लेकिन यदि उसको कुछ चोट लग जाती है तो दर्द किसको होता है? उसको बुखार आता है तो दर्द किसको होता है? हमें होता है. और भगवान न करे यही उत्तरी वह संतान बिगड़ जाती है, कुछ गलत कार्य करने लगती है तो दुख किसको होता है? उसी तरह से हर वो वस्तु जिसको हम सोचते हैं कि हमारे सुख का कारण बनेगी, वही हमारे दुख का कारण बनती है. इसे भगवान एक बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन बताते हैं आनंदित होने का. 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यात्वा मां शान्तिरिच्छति. अगर आपको आनंदित होना है तो आप समझो कि संसार की सारी वस्तुओं का भोक्ता मैं हूँ, यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, तपस्या का भोक्ता मैं हूँ. और इस तरह से यदि करोगे और साथ में मुझे ये सोचोगे कि मैं सबका सुहृद हूँ, वेल विशर हूँ, तो ही तुमको शांति प्राप्त हो सकती है. उसके बाद भगवान ध्यान योग बताते हैं. छठे अध्याय में भगवान ध्यान के विभिन्न तरीकों को बताते हैं और अर्जुन को बोलते हैं इसी तरह से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन भगवान से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई भक्ति के मार्ग को प्रारंभ भी करता है, लेकिन यदि ऐसा हो कि वो बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? तो बहुत ही सुंदर ऐसा उत्तर देते हैं. एंड दैट इज कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है किसी ने धर्म का रास्ता अपनाया हो और उसे अधर्म से पराजित होना पड़ता हो. कभी भी ऐसा नहीं होता. नेवर एवर. लेकिन फिर भी यदि कभी आप भक्ति का रास्ता अपनाते हो और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको दोबारा से जन्म मिलेगा, क्योंकि ये जीवन अंत नहीं है, ये तो एक एपिसोड है जो खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट एपिसोड में वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको नए जन्म में एक ऐसा शुद्ध सुंदर वातावरण मिलेगा जहाँ से आप अपनी भक्ति को कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो. यहाँ पर कर्म योग समाप्त होता है, भगवान भक्ति योग प्रारंभ करते हैं. चैप्टर नंबर 7 से भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो इस रास्ते को स्वीकार करता है और उन हजारों में से भी कोई एक ऐसा होता है जो उस रास्ते पर चलकर मुझे प्राप्त करता है. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्त्वतः. भगवान अपनी महानता बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ. जो भी है संसार में, चाहे वो परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है, उसका स्वामी मैं ही हूँ. और भगवान कहते हैं प्रकृति के विषय में, दैवी ये शागुणमयी मम माया दुरुद्रया मामेव ये प्रवत्यन्ते माया में काम करंती. ये तीन गुण वाली मेरी प्रकृति है, उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो आसानी से उसे पार कर लेता है. और उसके बाद भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलता है इतना सरल है यदि प्रकृति को पार करना, फिर सारे लोग क्यों नहीं आते आपकी शरण में? तब भगवान बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा नमा माया बहुत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता. जो निकट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं. मेरी शरण में तो बहुत ही कम लोग आते हैं. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवद्यते वासुदेव सर्वमति समहात्मा सूतमेव. करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान प्राप्त होता है वही मेरी शरण में आते हैं और उन्हें और वो ये कहते हैं कृष्ण ही सब कुछ है. ऐसा महात्मा गलियों में मिलने वाला नहीं है,
वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई ये कृष्ण कथा में कितने थोड़े से लोग आते हैं, तो भगवान कहते हैं भाई महात्मा है, हीरे की दुकान पर हर कोई राह चलता नहीं खड़ा होता है ना, जहाँ पर आर्टिफिशियल इम्यूनिटेशन ज्वेलरी मिलती है ना वहाँ पर तो सेल लगती है, हीरो की दुकान पर सेल भी नहीं लगती, वो तो कोई रेयर ही जा सकता है। तो भगवान यहाँ पर अंत में बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करते हैं उनको ये वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। फिर भगवान से चैप्टर नंबर 8 में अर्जुन पूछते हैं कैसा वो अंत समय आपको कैसे याद करते हैं, तब भगवान उत्तर देते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तिरत्यन्ते कलेवलम तब तमे वैति कौन्तेय सनातन भाव भाविता। जिस भाव को तुम सारे जीवन याद करते रहोगे ना अंत समय में वही आपको याद आएगा, और इसलिए तुमको क्या करना चाहिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरो युद्धश, हर समय मुझे याद करो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो अब समय साथ नहीं दे रहा है, चैप्टर नंबर आगे मेरी इच्छा तो ये थी, मतलब इतना ये हम लोगों को आता नहीं है ना, वरना मेरे को भी ऐसा अगर आता होता तो जब मैं क्लास शुरू करती तो समय भी स्टॉप कर देती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कभी समय मिला तो आगे भगवदगीता की चर्चा करेंगे। भगवान ने अंतिम चैप्टर नंबर 9 जो है भगवान का हृदय, भगवदगीता का हृदय है, क्योंकि भगवान ने कहा गीता जो है वो मेरा हृदय है, गीता में हृदय पार्थ, गीता भगवान कहते हैं मेरा हृदय है, और गीता का हृदय क्या है चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 का हृदय क्या है जानते हो, श्लोक नंबर 34 जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मन सत्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यंते प्रति जाने जीवस्मि, आपको मेरा भक्त बनना है, मेरी पूजा करनी है, मुझे नमस्कार करना है, मेरे लिए कार्य करना है, और इस तरह से यदि करोगे तो आप मुझे प्राप्त करोगे। मेरी भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, भगवान चैप्टर 9 से श्लोक नंबर 26 में बोलते हैं कि भक्ति बहुत सरल है, बस मुझे प्यार करना सीखो, कुछ भी दोगे ना वो वस्तु की वैल्यू को मैं नहीं देखता हूँ, कुछ भी दे दो पत्रम पुष्पम करम तुम एक फूल दे दो एक फल दे दो एक पानी का गिलास भी यदि मुझे दोगे तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा, और मैं जानता हूँ जब में मुझे लगेगा कि तुमने मुझे प्रेम से दिया है, यो ने भक्तिया प्रेम से दी, तो भक्ति से प्रेम के साथ मेरे साथ जिस तरह भी व्यवहार करोगे ये जैसा मान प्रबल व्यक्ति दास सकते हो तुम जैसा भी मेरे साथ करोगे मैं भी तुम्हें उसी तरह से प्रेम करूंगा, तुम माता का प्रेम दोगे तो मैं तुम्हें भी पुत्र बन कर मिलूंगा, यदि तुम मित्र बनोगे मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा, यदि सखा बनोगे तो मैं तुम्हारा सखा बन जाऊंगा, और यदि प्रेमिका बनोगे तो मैं तुम्हारा प्रेमी बन जाऊंगा। तो संबंध बनाना है, और चतुर्श्लोक की भगवदगीता में चैप्टर नंबर 10 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो जो कुछ भी संसार में है वो उसका स्वामी मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं हर एक वस्तु का स्वामी हूँ, अतः परतः मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, और वही संबंध को तुम मुझसे जोड़ो। और उसका प्रोसेस क्या है, उस संबंध को कैसे जोड़ा जाता है, भगवान बताते हैं 10.9 में मन चित्ता मज्जतः प्राणा बोधयन्तः तदस्तन कथयन्तश्च माम नित्यम् पश्यन्ति च रमन्ति च, इस संबंध को तुम तभी जोड़ सकते हो जब मेरी कथाओं को सुनोगे, मेरे विषय में श्रवण करोगे, और मुझसे जैसे जैसे आप मेरे विषय में सुनते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा मेरे से प्रेम बढ़ेगा, और जब जब प्रेम बढ़ता जाएगा फिर क्या करोगे, भगवान कहते हैं 10.10 में तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नाम उपयाति, फिर मैं उसे ऐसी बुद्धि दूंगा क्योंकि वो कंटिन्यूस मेरे नाम का स्मरण करेगा, मेरी कथाओं को सुनने वाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। करेगा, फिर मैं उसे ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे वो मुझे प्राप्त करेगा और मैं अपनी अनुकंपा से प्रदान करूँगा। जीवन का लक्ष्य है कुछ ऐसा करो कि उसकी अनुकंपा प्राप्त हो, उसकी कृपा प्राप्त हो, यही प्रयोजन है। जीवन क्यों मिला है? भगवान कहते यदि मैं मेरा नाम लोगे तो क्या होगा?
अनुकंपार्थम अहमज्ञानजं तम नाशयामात्मभावस्तु ज्ञानरीपेण भास्वता।
उन पर खास दया दिखाऊंगा और हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसे ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके समाप्त करूंगा। फिर भगवान अपनी विभूतियों को बताते हुए अंत में कहते हैं,
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्त्वं मा तेजोऽंशसंभवा।
इस संसार में तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, प्रेम करने योग्य लगता है, प्रकाशमान लगता है, वो क्या है? मम तेजो अंश संभवा। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा तेज या एक छोटा सा सफोलिंग है जो तुम्हें आकर्षित करता है। तो तुम ये सोचो कि जब उसको उसकी ओर आकर्षित होकर तुम्हें इतना आनंद आ रहा है तो यदि मुझ मेरी ओर आकर्षित होगे और अपने प्रेम का केंद्र मुझे बनाओगे तो तुम्हारे जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द जो है वो खुद को खुद की जल रहे हैं, मेरा तो इच्छा भी खत्म करने की।
प्रेम से तीन बार महामंत्र पढ़ेंगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद् गीता मात की, श्रीमद् भगवद् गीता मात की, श्रीमद् भगवद् गीता मात की।